पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्याय 8 के बारे में चर्चा की थी, जिसको अध्याय 8 को चार भागों में विशेषतया विभाजित किया जा सकता है। पहला पहले श्लोक से लेकर 4 नंबर श्लोक तक, जिसमें अर्जुन के संदेह थे। अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण से, अधियज्ञ कौन है, ब्रह्म कौन है, एक्सेट्रा। उसके बाद भगवान ने बताया कि जीवन के अंत में स्मरण जिस भाव का हमें रहता है, वही भाव हमको प्राप्त होता है। और फिर 9 नंबर श्लोक से लेकर 22 नंबर श्लोक तक योगी लोग के बारे में चर्चा किया भगवान ने, और भगवत प्राप्ति वो लोग कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा किया। और अंत में 23 नंबर श्लोक से लेकर 28 नंबर श्लोक तक भगवान ने भगवान अपनी भक्ति के बारे में बताया। तो अभी जो 9th चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान मतलब मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। तो एक होता है ज्ञान, एक होता है गुह्य ज्ञान, एक होता है परम गुह्य ज्ञान। तो ये जो भगवद गीता का 9th चैप्टर है, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कह सकते हैं भगवद गीता का। अगर देखें तो इस अध्याय में भगवान विशेष ज्ञान दे रहे हैं, जो कि वास्तव में सबसे ज्यादा सीक्रेट ज्ञान है। हम चर्चा करेंगे वो क्या है। ये चैप्टर देखा होगा, कई सारे बच्चे भी इस चैप्टर को पूरा याद कर लेते हैं। क्या है इस चैप्टर में, चलिए जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से भगवद गीता 6 6 6 तीन अध्यायों में बटी हुई है, तीन भागों में बटी हुई है। अध्याय शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो खास करके कर्म योग के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद के जो अध्याय हैं वो 6 अध्याय भक्ति योग के बारे में बात करते हैं, और अंत के जो अध्याय हैं वो जो है ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से भगवद गीता को तीन भागों में बांटा गया है। तो अभी हम लोगों ने शुरू के 6 चैप्टर तो पढ़ लिए थे, जिसमें कर्म योग के बारे में चर्चा है, और उसके बाद भी 7 नंबर और 8 नंबर का चैप्टर हो चुका है। और ये खास करके जो 9वां अध्याय है, ये भगवान इस अध्याय को बोलते हैं कि परम गुह्य ज्ञान है, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, सारे नॉलेज का जो है ये सार है। तो इन 6 चैप्टरों में भगवान ने अपने बारे में बताया है, जो 7 नंबर श्लोक 7 नंबर अध्याय से लेकर 12 नंबर अध्याय तक है। और भगवान ने अपने बारे में बताया, भक्तों के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, और अपने संबंध के बारे में बताया कि किस प्रकार से भगवान का संबंध अपने भक्तों से रहता है। ये चार चीजें मुख्यतया जो है डिस्कस की हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2रे और 3रे अध्याय में सुना था कि किस प्रकार आत्मा के बारे में जो हमने ज्ञान लिया था वो सुना था। आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उसको बोलते हैं ज्ञान। फिर 7वें 8वें अध्याय में हमने जाना था परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में। तो उस ज्ञान को बोला जाता है गुह्य ज्ञान। और ये जो 9th चैप्टर है ये है परम गुह्य ज्ञान। हाँ, जैसे मैंने बताया शुरू में 2रा 3रा चैप्टर जो था, जो भगवद गीता के विषय हैं आत्मा, हाँ अपने बारे में जो ज्ञान है वो उसको क्या बोलते हैं ज्ञान। और 7वें 8वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में बताया वो है गुह्य ज्ञान। और ये जो 9th चैप्टर है इसमें भगवान परम गुह्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि जैसे एक मोती सीप के अंदर छुपा रहता है, भगवद गीता का सार कृष्ण अर्जुन संवाद में छुपा हुआ है, और खास करके इस अध्याय में भगवान कृष्ण इस परम गुह्यतम रहस्य को प्रकट करते हैं। तो आज के सत्र में 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले श्लोक से लेकर 3 नंबर श्लोक तक, 4 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक, 11 से 25, और लास्ट में 26 से 34। पहले 3 श्लोकों में भगवान ने इस ज्ञान की महिमा को बताया है, ये जो ज्ञान है ये क्या है उसके बारे में भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान ने अपने अचिंत्य संबंध के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो इस पृथ्वी इस प्रकृति से जुड़े हुए भी हैं, और साथ साथ में डिटैच भी हैं, अटैच भी हैं डिटैच भी हैं, दोनों के बारे में बताया। और फिर 11 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक तक भगवान ने अन्य उपासकों के बारे में बताया है। कौन कौन से उपासक होते हैं? देवी देवता के उपासक होते हैं, ब्रह्मोपासक होते हैं, कोई और किसी साधु को बाबा को भगवान मान लेते हैं, कुछ ऐसे उपासक भी होते हैं। भगवान ने उन सब के बारे में चर्चा की है। और लास्ट में भगवान ने 26 नंबर श्लोक से लेके 34 नंबर श्लोक तक भक्ति की महिमा के बारे में चर्चा किया है, जो कि वास्तव में क्या है, इस अध्याय का सार है और परम गूह्य ज्ञान है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे पहले श्लोक से लेकर 3 नंबर श्लोक तक, शुरू के 3 श्लोकों के बारे में। परम गूह्य ज्ञान, तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि 2 नंबर अध्याय से लेकर 6 नंबर श्लोक तक, जो 6 नंबर अध्याय तक गुह्य ज्ञान, 7 नंबर 8 नंबर में गुह्यतर, और अध्याय 9 में गुह्यतम या परम गुह्य ज्ञान। इस अध्याय में भगवान के प्रभावशाली दृष्टिकोण और एक शुद्ध भक्त की उत्कृष्टता का वर्णन आता है, इसलिए इस ज्ञान को क्या बताया जाता है, परम गुह्य ज्ञान बताया जाता है। तो जो आत्मा का ज्ञान है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आत्मा का ज्ञान क्या बताया जाता है, गुह्य ज्ञान बताया जाता है। और 7 और 8 नंबर श्लोक में, 7 नंबर 8 नंबर अध्याय में हमने जाना था, वो जो भगवान के बारे में ज्ञान है वो गुह्यतर है। गुह्य मतलब सीक्रेट, गुप्त। और ऐसे ही जो भगवान के बारे में नॉलेज है वो भी वो ज्यादा गुह्यतर है। लेकिन अभी जो इस 9th चैप्टर में भगवान बताने जा रहे हैं, कहते हैं कि अगर इसको कोई समझ जाता है इस चैप्टर को और भगवान की भक्ति को अंगीकार कर लेता है, तो उसका भगवत धाम जाना जो है वो कंफर्म हो जाता है। इसलिए इसको परम गुह्य ज्ञान करके इस अध्याय को बताया गया। भगवान बुलाते हैं हम सबको कि हम उनके साथ आएं और रासलीला में पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञान की बात करते हैं। कृष्ण उस ज्ञान की महिमा सबसे पहले बताते हैं, पहले 1 नंबर श्लोक से लेकर 3 नंबर श्लोक तक। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षशे सुभात। ये जो मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं, ये एक ऐसा ज्ञान है, ये बहुत शुद्ध ज्ञान है। और इस ज्ञान को बोलते हैं कि चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, अनसूयवे प्रवक्ष्याम अनसूयवे, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए इस ज्ञान को तुम्हें बताऊंगा और साथ साथ में विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञान मतलब ज्ञान, फिलोसॉफी, और विज्ञान मतलब कैसे प्रैक्टिकली हम उसको समझ सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ में क्या बोलते हैं, कहते हैं उसको जानने के बाद यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जिसको जान लेने के बाद तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो दो चीजें, भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति किसको होती है, जो लोग ईर्ष्या नहीं करने वाले व्यक्ति हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हर कोई किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। चूंकि भगवान कहते हैं चूंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए ये ज्ञान मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। तो आप देखेंगे संसार में हर जगह कंपटीशन दिखाई देता है हमको, पूरे विश्व में एक व्यक्ति अपने को दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है हर जगह। चाहे आप देखें, दो भाई हों, दो फैमिली हों, दो ग्रुप हों, दो सोसाइटी हों, दो राज्य हों, दो देश हों, हर जगह वो श्रेष्ठता का अनुभव करना चाहते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। और उस कारण हमारे अंदर एक दुर्गुण विकसित हो जाता है, वो है ईर्ष्या। तो दूसरों के ऊपर स्वामित्व जताना ये जीव का स्वभाव है, खास करके इस भौतिक संसार में। आध्यात्मिक संसार में भगवान की सेवा करना जीव का स्वभाव है, लेकिन भौतिक संसार में आके वो भौतिक जो गुण है उनसे मिक्स होके उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि वो प्रकृति के ऊपर राज करेगा, वो दूसरों के ऊपर स्वामित्व जताना चाहता है। आप जानते ही हैं किस प्रकार मुगलों ने 700 सालों तक राज किया, मुसलमानों ने उसके बाद 300 सालों तक लगभग अंग्रेजों ने राज किया। तो दूसरों के ऊपर स्वामित्व जताना ये क्या है, स्वभाव है। आप जानते होंगे हम लोगों के यहाँ जो रेलवे लाइन बिछाई गई, किसने बिछाई, अंग्रेजों ने बिछाई। तो सुन लो, सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन क्या किया उन्होंने, उस रेलवे लाइन को बिछा के सारा माल उठा उठा के लेके चले गए भारत का। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जैसे एक जीव दूसरे जीव से ईर्ष्या रखता है, वैसे ही ये जीव जो है वो भगवान से भी ईर्ष्या रखता है। हर कोई व्यक्ति फर्स्ट आना चाहता है। आप किसी, आप इस क्लास में जाइए, बच्चों से पूछिए, बोले मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ। हर कोई फर्स्ट आना चाहता है। ये जो कंपटीशन की भावना है ये क्या है, ये ईर्ष्या के कारण होती है। तो ये जो कंपटीशन चलता आ रहा है हम लोगों के बीच में, सारे जीवों के बीच में कंपटीशन चला रहा है, ये शुरू कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम भगवान के धाम में थे और हमारी इच्छा हुई कि चलो हम भगवान की सेवा ना करके हम खुद की सेवा करें। ये भावना जैसे ही आई तुरंत क्या हुआ, हमारे अंदर जो है ये ईर्ष्या जो है जन्म ले ली। इवन घरों के, घरों में भी देखा जाता है, वो बोलता है कि मेरा मेरा मेरी बात चलेगी घर में या तुम्हारी बात चलेगी, मेरी बात मानी जाएगी। तो ये भी जो स्वामित्व जताने की जो भावना है वो भी ईर्ष्या के कारण ही हमारे हृदयों में आती है। बोलते हैं मेरा आइडिया, माई वे इज हाईवे, हाँ तुम्हारा जो वे है वो बेकार है, मेरा वे हाईवे है, मेरी सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो इस प्रकार से लोग मिथ्या अहंकार में रहते हुए दूसरे जीवों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है वास्तव में? ईर्ष्या का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो उत्कर्ष है, जो जो उठ रहा है उसको सहन नहीं कर पाता, तो उस भाव को क्या बोला जाता है, ईर्ष्या बोली जाती है। तो जीव जो है सबसे ईर्ष्या करते हैं, ठीक वैसे ही जीव भगवान से भी ईर्ष्या करता है, क्योंकि जीव देख रहा है कि देखो भगवान कितने, सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए। ये भाव जब किसी जीव के अंतर्गत अंदर आता है तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है भगवान से ईर्ष्या कर रहा है। तो क्यों ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि भगवान स्वराट है। स्वराट का अर्थ होता है कि भगवान किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, भगवान पूर्ण तरह स्वतंत्र है, जो उनको करना है, जो चाहना है, जो करना है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अभी उनका मन हुआ तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे ही जीव भी चाहता है कोई कि वो भी अपने हिसाब से जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा जिए। हाँ, लेकिन हम लोग तो सुराट है नहीं, हम लोग तो भगवान के अधीन है, भगवान की प्रकृति है, प्रकृति के गुण है, हम गुणों के अधीन रहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? इसीलिए जीव चाहता है कि वो भी स्वतंत्र, जैसे भगवान स्वतंत्र है, भगवान स्वराट है, ऐसे वो भी बनने का प्रयास करता है। तो इसीलिए जीव, आप देख रहे हैं इतनी सारी जो मेटेरियल प्रोग्रेस हो रही है, जो भौतिक विकास हो रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि वो भगवान बनना चाहता है जीव, उसके अंदर ये भावना है कि वो भगवान बने। इसीलिए कि देखो इस पृथ्वी पे मेरा राज्य रहेगा, ये जो देश है ये मेरे अंडर में कार्य कर रहा है, ये भावना ही जो है ये भौतिक विकासों को करा रही। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं सुनो, ये ज्ञान मैं तुमको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मुझे समझते हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको यह ज्ञान दे रहा हूं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं बहुत मुख्य बात कि बड़े से बड़े विद्वान लोग भी जो हैं वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि सिगरेट पीने वाले लोग, गांजा खाम पीने वाले लोग, ये सब लोग भी भगवद गीता पे टीका लिखते हैं। भगवत गीता वो दूसरों को समझाना चाहते हैं, खुद तो समझे नहीं है, सिगरेट पी रहे हैं लेकिन दूसरों को समझाना चाह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अशुद्ध व्याख्याएं करते हैं। पहली चीज तो उनको भगवान से ईर्ष्या है, इसलिए ईर्ष्या होने के कारण वो जो तात्पर्य लिख रहे हैं उस तात्पर्य का कोई मतलब नहीं है। केवल जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनकी जो टीकाएं हैं, टीकाएं मतलब जो डिटेल में श्लोक को डिटेल में लिखना, तात्पर्य जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो तात्पर्य जो है वो उन्हीं लोगों का पढ़ना चाहिए जो कृष्ण के भक्त हैं। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखता है वो न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है ना वो पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। कई तरीके के लोग, एक दो तरीके के लोग नहीं, एक बोलता है, कहता है भगवान कृष्ण ने 16,108 शादी की थी, हम कम से कम 16 तो करेंगे। तो भगवान ने 16,108 शादियां किया तो भगवान ने उनको मैनेज भी किया है कि नहीं, उनको अच्छे से मैनेज करते थे, सबके लिए एक एक महल था, और भगवान अपने आप को 16,108 भागों में विस्तारित कर लेते थे और सबके साथ रहते थे। अभी ऐसा तो संभव नहीं हमारे लिए। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहता है, कोई बोलता है कि भगवान ने रासलीला किया, हम भी रासलीला करेंगे, तो ये सब चीजें जो है भगवान को समझे बिना अगर बोलना जो है वो मूर्खता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं को उनका अनुकरण करना चाहता है तो उनको हर लीलाओं का अनुकरण करना चाहिए। तो रास लीला से पहले भगवान ने गोवर्धन धारण किया था, पहले वो भी लीला को जो है अनुकरण करना चाहिए। नहीं कम से कम गोवर्धन का पहाड़ उठा सकते तो कम से कम एक ईंट तो उठा के रखे एक उंगली पे, उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। फिर भी वो क्या करते हैं, वो गीता की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी टीकाओं से हम सबको सावधान रहना चाहिए। अभी भगवान शुद्ध भक्त के ज्ञान की विशेषताएं बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। राज विद्या राज गुई हम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकुम कर्तुम अव्ययम्। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो राज विद्या है, ये जो ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूं, ये कौन सा ज्ञान है? ये राज विद्या। राज विद्या का अर्थ होता है सारी विद्याओं का राजा, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो उस ज्ञान के बारे में बताते हैं, कहते हैं राज गुई हम, ये कैसा है? गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट है। किसी को बुलाओ ना मिलने के लिए, उनसे अखिलेश्वर को किसी को बुलाओ उनसे मिलने के लिए। ये राजगुही हम है, बहुत सीक्रेट नॉलेज है ये, ये लोगों के सामने बताया नहीं जाता, ऐसा ज्ञान वो है ये। और क्या है? पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है, प्योर है, और साथ साथ में इदम उत्तमम, उत्तमम मतलब सुप्रीम नॉलेज। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षावगमम, इसको आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। धर्मम सुसुखम, सुसुखम मतलब इसको बहुत आसानी से बहुत सुख पूर्वक संपादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान की 8 विशेषताएं बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार नारद मुनि वो भगवान कृष्ण के विख्यात भक्त बन गए, कृष्ण भावना भवित बने। कैसे आता है? बोलते हैं कि नारद मुनि पिछले के पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। नारद मुनि एक गंधर्व हुआ करते थे। तो वो एक बार देवताओं की सभा में वो गा रहे थे, तो देवताओं की सभा में भजन गाए जाते हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे वहां पे, धोखे से उन्होंने फिल्मी गाना गाना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया, बोला जाओ तुम दासी के पुत्र बन जाओ जाके तुम्हारा। तो उस प्रकार से वो दासी के पुत्र बने, एक दासी मतलब एक शूद्र तुच्छ स्त्री उसके पुत्र के रूप में जन्मे। अभी क्या हुआ, इस जन्म में क्या हुआ, वो जो दासी थी वो जहां रहती थी वहां पे कुछ परमहंस भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो वहां पे आए, और ये जो दासी थी इन्होंने अपने पुत्र के साथ 4 महीने, वर्षा ऋतु के 4 महीने उन वैष्णवों की सेवा किया। ये जो ब्राह्मण और जो वैष्णव आए हुए थे ये वहीं पड़ोस में आए हुए थे, और इन माता और पुत्र ने मिलकर उनकी बहुत अच्छे से सेवा किया, उनको अच्छे से भोजन कराया, अन्य जो भी चीजें थी वो प्रदान किया। तो बोलते हैं क्योंकि मेरी माता उनकी सेवा कर रही थी, नारद जी बोलते हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे अहेतु की कृपा प्रदान किया। क्योंकि माँ सेवा कर रही थी तो बच्चा भी सेवा कर रहा था। इस प्रकार क्या हुआ, एक बार उनकी अनुमति से हाँ उनसे पूछ के मैंने उनके भोजन के अवशेष यानी उनका बचा हुआ भोजन उसको ग्रहण किया, तो उससे क्या हुआ, मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। तो बोलते हैं वैष्णव का अगर कोई भोजन बचा हुआ जो अवशेष होता है, जो खाने के बाद जूठा बच जाता है, उसको अगर कोई उन वैष्णव की अनुमति से ग्रहण करता है, वो वैष्णव बोले कि हाँ आप ले सकते हैं, तब ऐसे चोरी छिपे नहीं, तो क्या हो सकता है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यही हुआ नारद जी के साथ। और इस प्रकार उनके संग में ये तो हुआ ही, उन्होंने उच्छिष्ट ग्रहण किया एक कुछ दिन, और साथ साथ में उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में अनेक कथाएं सुनी। और इस प्रकार कथाएं सुनते सुनते ऐसे विषयों में नारद जी की जो रुचि थी, जो कि उस समय दासी पुत्र के रूप में थे, वो हर पल बढ़ती चली गई, वो रुचि हर पल बढ़ती चली गई। उन्होंने अनुभव किया कि मैं इस भौतिक तथा सूक्ष्म शरीर से भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं, और उन महान भक्तों से बहुत प्रेम करने लगा, और मैंने विनम्रता पूर्वक उनके आदेशों का कठोरता से पालन किया। जैसा उन्होंने भक्ति की विधि विधानों को बताया हुआ था, उन विधि विधानों का पालन करते हुए नारद जी ने क्या किया, उन आदेशों को कठोरता से पालन करना शुरू कर दिया। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने विनम्रता पूर्वक उनके आदेशों का कठोरता से पालन किया, जैसा उन्होंने बोला था, जो विधि विधान उन्होंने बोला था उन सारे विधि विधानों का पालन करने का प्रयास किया। और इस तरीके से क्या हुआ, जब वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे भक्ति योग के बारे में बताया। भक्ति योग मतलब सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की कला, उसके बारे में उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भक्ति करके कोई व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, और इस प्रकार वो चले गए। कुछ ही दिनों के बाद नारद जी बोलते हैं कि उनकी माँ का निधन हो गया, और निधन होने के बाद मैं अकेला हो गया, तो मैंने तुरंत घर छोड़ दिया और उत्तर की ओर चलने लगा, हिमालय की तरफ चलने लगा। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद जब मैं एक जगह पहुंचा, बहुत प्यास लगी हुई थी, मैं थका भी बहुत था, मैंने पानी पिया और स्वयं को तरोताजा करने के लिए स्नान किया। फिर मैं एक विशाल वटवृक्ष की छाया में बैठ गया और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा सिखाई गई विधि से हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। अभी इस प्रकार से नारद जी अपने पिछले जन्म में क्या करने लगे, परमात्मा पर ध्यान करने का प्रयास करने लगे। जैसे ही मैंने अपने मन को प्रभु के चरण कमलों पर केंद्रित किया, वो दिव्य प्रेम के कारण परिवर्तित हो गया, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान कृष्ण मेरे हृदय कमल पर प्रकट हो गए। मेरी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित हो गईं, परंतु बहुत जल्द ही भगवान अदृश्य हो गए। तो इस प्रकार जब नारद जी छोटे बच्चे ही है, उन्होंने उस अवस्था में अपने मन को जब भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया, भगवान पर ध्यान करने का प्रयास किया, तो वो दिव्य प्रेम के कारण परिवर्तित हो गए, क्योंकि कोई विकार नहीं था और साधुओं ने जैसा बोला हुआ था बिल्कुल वैसा ही वो कर रहे थे। उससे क्या हुआ, आंखों से अश्रु गिरने लगे और भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए हृदय में, मतलब नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ हृदय में। लेकिन भगवान बहुत जल्दी अदृश्य हो गए, तुरंत ही अदृश्य भी हो गए। वो क्यों, अब नारद जी ने जब देखा कि भगवान अदृश्य हो गए तो बहुत परेशान हो गए, बहुत उनको भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे बालक, तुम मुझे इस जीवन काल में पुनः नहीं देख पाओगे, जो सेवाओं में पूर्ण नहीं है और सभी भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है, वो शायद ही मुझ तक पहुंच सकते हैं, अर्थात वो लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो सेवाओं में पूर्ण नहीं है और जो सभी भौतिक दोषों से मुक्त नहीं है। इस प्रकार नारद जी पिछले जन्म में जब ऐसा हुआ, आगे बोलते हैं, विशेष कृपा के रूप में केवल मुझे पाने की तुम्हारी तीव्र इच्छा को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे सामने स्वयं को प्रकट किया है। मुख्य बात क्या थी, भगवान चाहते थे कि ये जो इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, मुझे प्राप्त करने की नारद की, ये और तीव्र हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया। अभी इस ट्रेलर को दिखाने से क्या होगा, तुम सदा कृष्ण भावना में उन्नति करते रहोगे और सृष्टि के निर्माण और प्रलय के समय भी हमेशा मेरा स्मरण करते रहोगे, हमेशा मेरा स्मरण करते हो, मेरे शुद्ध भक्त बन जाओगे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न होकर समय के साथ मैं सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो गया और मृत्यु प्राप्त किया। इस प्रकार उनकी उस शरीर वो शरीर छूटा और जैसे ही वो शरीर छूटा तुरंत ही मुझे नारद के रूप में एक दिव्य शरीर मिला। तब से भगवान विष्णु की कृपा से मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों में विचरण करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा हूं। नारद जी को विशेष सुविधा है, वह आध्यात्मिक जगत भी जाते हैं, भौतिक जगत भी जाते हैं, दोनों जगह विचरण करते हैं और हर जगह नारायण नारायण का गान करते रहते हैं, भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं। नारद जी कितने विशेष हैं इसका पता कैसे चलेगा? उनके शिष्यों से। आजकल जो टीवी में दिखाते हैं, सीरियल में दिखाते हैं, नारद जी वैसे नहीं है। नारद जी चुगली करने वाले या फिर किसी का कुछ किसी का बताने वाले, ये सब नहीं है नारद जी। नारद जी के शिष्य कौन है उनके द्वारा हम जान सकते हैं कि नारद जी कितने महान हैं। नारद जी के शिष्य हैं ध्रुव महाराज, नारद जी के शिष्य हैं नल कुबेर और मणिग्रीव, नारद जी के शिष्य हैं स्वयं भगवान व्यासदेव, नारद जी के शिष्य हैं प्रहलाद महाराज, नारद जी के शिष्य हैं प्राचीन बरही, नारद जी के शिष्य हैं चित्रकेतु महाराज, और नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी से ज्ञान ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये नारद जी इस प्रकार अगले जन्म में यानी कि तीसरे जन्म में क्या बन गए? नारद जी बन गए। तो ये जो भगवान की भक्ति है इसको हम ए बी सी डी ई एफ जी में बोल सकते हैं। सबसे पहला है ए। ए मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ को मानना, जो पूर्ण सत्य है उसको मानना, ये ए। दूसरा है बी। बी मतलब जो ब्राह्मण है वैष्णव है उनको रेस्पेक्ट देना, उनको आदर देना। सी, सी मतलब गाय काऊ, उनको गायों को पालना पोसना, उनको पूज्य मानना। डी, डी मतलब डेमी गॉड्स यानी देवता, उनको रेस्पेक्ट देना उनका आदर करना। ई, ई मतलब एटिकेट्स, कैसे आचरण करना चाहिए, वैष्णवों से कैसे आचरण करना चाहिए, सीनियर से कैसे आचरण करना चाहिए, जूनियर से कैसे करना चाहिए, साथ वालों से कैसे करना चाहिए, हाँ कैसे किसी स्त्री से आचरण करना चाहिए। तो चाणक्य कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के सारी स्त्रियों को मां की दृष्टि से देखना चाहिए। तो कैसे पेड़ों से आचरण करना चाहिए, कैसे जानवरों से आचरण करना चाहिए, ये एटिकेट्स। फिर एफ, एफ मतलब भगवान के चरण कमलों की तरफ भागने का प्रयास करना चाहिए, उनको पाने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी खतरा है तो भगवान की शरण लेना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ और जी। जी मतलब गुडनेस, गुडनेस मतलब सतोगुण में रहना चाहिए, सतोगुणी प्रधान जो है जीवन जीना चाहिए, हर कार्य सतोगुणी करना चाहिए जीवन में रहते हुए। तो जो असुर हैं वो इसके उल्टा करते हैं, हाँ तो वो क्या करेंगे, वो कृष्ण को नहीं मानेंगे, अध्यापकों को नहीं मानेंगे, वैष्णवों को नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे, गाय को खा जाएंगे। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये भगवद गीता का ज्ञान, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये किसी आसुरी व्यक्ति से इस ज्ञान को स्वीकार मत करो, उसकी भगवद गीता जो है लिखी हुई उसके द्वारा मत सुनो। देखिए भगवद गीता के जो श्लोक हैं वो तो भगवान द्वारा प्रदत्त है, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो भगवान के भक्त से ही सुननी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ईर्ष्या आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगी और आप भगवान से ईर्ष्या करने लगेंगे और निराकार मार्ग की तरफ चले जाएंगे। कैसे सोचने लगेंगे कैसे जीव जो है भगवान बन सकता है। जैसे हम लोग एक भगवान की, जैसे सूर्य की किरण होती है तो हम उस किरण के समान हैं और भगवान सूर्य के समान है, किरण कभी सूर्य नहीं बन सकती, ऐसे ही हम कभी भगवान नहीं बन सकते। तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को बताया। तो ये जो तात्पर्य भगवान अर्जुन को जो भी भगवद गीता में ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को अगर कोई आसुरी व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है तो कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई हनी शहद का पात्र है, शहद किसी बर्तन में रखा हुआ है, अभी शहद को उस बर्तन को खोल के उसको खाना चाहिए, लेकिन ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, उस शहद को ढक्कन बंद है उसका और बाहर से चाट रहे हैं उस बर्तन को और सोच रहे हैं कि शहद की मिठास जो है हमको प्राप्त हो जाएगी, ये उस तरीके से है। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो है तात्पर्य जो है नहीं पढ़ना चाहिए। वो क्या बोलेंगे, कभी कभी बोलते हैं कृष्ण की शरण में मत जाओ, उनके अंदर जो परमात्मा बोल रहा है उसकी शरण में जाओ। ऐसा फालतू फालतू वो लोग बोलते रहते हैं, वो हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, राज विद्या राज गुह्य हम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, ये परम गुह्य ज्ञान है, पवित्र है, उत्तम है, ये अंधकार को खत्म करने वाला है और ये अनुभव गम्य है, कोई इस व्यक्ति को पर्सनली देख सकता है। अभी नारद जी के जीवन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ये भगवान के द्वारा भक्ति का ज्ञान जो है, उसके द्वारा नारद जी बन गए। पहले वो एक साधारण दासी के पुत्र थे। उन लोगों ने जो परमहंस थे, उन्होंने नारद जी को चार उपदेश खास करके दिए। हालांकि बहुत सारे उपदेश दिए, उसमें से चार क्या थे? अध्यात्म को बढ़ाओ, हर चीज को भगवान की सेवा में यूज करो, हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करो और भगवान का नाम लेते रहो। तो इस प्रकार नारद जी जो है वो नारद जी बने। ठीक वैसे ही श्रील प्रभुपाद, ये देखिए, श्रवणम, सुनने के द्वारा, सुना के लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, अपनी किताबों के माध्यम से, कीर्तन करने के माध्यम से।
Multiplying by 1,000, and what it comes according to English calculation,
4,300,000,000.
That is 12 hours, and add again 12 hours night, then 8 billion,
600 million.
So Krishna comes after this billion. In one day, after one day, a Brahma.
तो ये ब्रह्मा जी की उम्र के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस तरीके से अपने ग्रंथों के माध्यम से हमको सिखाया है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम साख्यम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। ये नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को बताई थी। अगर कोई व्यक्ति इस नवधा भक्ति को जानता है, इन भक्ति के बारे में जानता है, तो वो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है, सबसे ज्यादा ज्ञान वाला वही व्यक्ति है ये जो इनके बारे में जानता है। तो इस ज्ञान के द्वारा वो जो नारद जी जो पहले जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व थे, वो बाद में दासी पुत्र बने और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो नारद जी बन गए। तो अगर हम लोग भी संसार में आए हुए हैं, भौतिक संसार में, और अभी हरिनाम के बारे में जानते हैं, भगवद गीता के बारे में भी जानते हैं, भागवतम के बारे में भी जानते हैं, हम जानते हैं कि भगवान को भोग लगाना चाहिए इत्यादि इत्यादि करके हम भी इजिली भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं, भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, भगवान हमारी तरफ ध्यान देंगे, हमको अपने धाम लेके जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है, अश्रद्धालु है, तो उसका पतन हो जाएगा। तो दो चीजें यहां पर बताई गई हैं, भगवान भक्ति भाव और दूसरा कोई ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए, वो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकता है, जो भक्ति भाव है जिसके अंदर और साथ साथ में जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। तो तीन तरीके के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। थर्ड क्लास लोग जो होते हैं वो भगवान के पास आते हैं, बोलते हैं हमको नौकरी दे दो। एक एक भक्त थे, वो आए मंदिर में रहने लगे और उनके मन में था कि उनको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही थी, सरकारी नौकरी के लिए उन्हें प्रयास कर रहे थे। तो उनको किसी एक भक्त ने बोल दिया कि आप 16 माला करोगे तो नौकरी मिल जाएगी। तो वो करने लगे और कुछ ही दिनों बाद उनकी नौकरी लग भी गई, नौकरी लग गई, उन्होंने 16 माला करना बंद कर दिया। तो बाद में वो मंदिर आना बंद कर दिए, आए ही नहीं कभी मंदिर, वो नौकरी लग गई उधर चले गए। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अटैचमेंट पाते हैं संस्था से या मेडिटेशन टेक्निक से, और बाद में क्या करते हैं, फिर उस संस्था को या फिर उसको सबको छोड़ देते हैं। उनका क्या है, वो भगवान से उनको प्रेम नहीं है। फिर सेकेंड क्लास लोग होते हैं, इन लोगों के अंदर श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है लेकिन नॉलेज जो है उतना अच्छा नहीं होता शास्त्रों का, लेकिन श्रद्धा ज्यादा होने के कारण ये लोग कभी छोड़ते नहीं है संस्था को। और फिर फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं जो शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनको कोई भी हरा नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि देखिए, हमारे शरीर में ऐसे तो बहुत सारे छिद्र हैं, लेकिन एक छिद्र है मुख, उस मुख में ही भोजन दिया जा सकता है, आप कहीं और भोजन देके हम आप अपने शरीर को तुष्ट नहीं कर सकते। आप आंख को भोजन नहीं दे सकते या किसी अन्य क्षेत्र को भोजन नहीं दे सकते। तो ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी से एक स्त्री पूछ रही थी, अमेरिका में छोटे कपड़े पहने हुए थी, प्रभुपाद जी से कहती है, प्रभुपाद आपने ये हेड सेव क्यों करके रखा है, बाल क्यों हटा देते हैं सिर के। प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा कि हमारे यहां सिर को ठंडा रखने का और पैरों को गर्म रखने का रिवाज है, यानी पैरों पे कपड़ा होना चाहिए और सिर पे बाल नहीं होना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी को कोई हरा नहीं सकता था, उनके जो लॉजिक थे उसमें कोई हरा नहीं सकता था प्रभुपाद जी को। ये देखिए कीर्तन कर रहे हैं, ये सारे विदेशी शिष्यों के साथ में, कई सारे इंडियंस भी हैं लेकिन बहुत सारे विदेशी शिष्य उनसे अट्रैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि शुद्धता, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। देख रहे कितनी संख्या में लोग हैं रथ यात्रा। श्रवण कीर्तन के बाद स्मरण, कैसे भगवान का स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान की लीलाओं को याद करने का प्रयास करना। फिर
मधुबन ने ध्रुव ने अपना तपस्या शुरू कर दिया, भोजन और नींद को भूलकर वह सारा दिन तपस्या में लीन हो गया था।
यह भगवान का स्मरण। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, जो लक्ष्मी जी करती हैं। अर्चनम, अर्चनम मतलब भगवान की आरती उतारना, भगवान को स्नान कराना, अर्चनम के अंतर्गत आता है।
By chanting, Yesha Deepaha, followed by the deity's Mula Mantra, offer four circles to the lotus feet, two circles to the navel, and three circles to the lotus face of the deity. Then offer the Deepa gracefully in seven circles.
तो इस प्रकार अर्चनम,
By chanting,
वंदनम, कैसे भगवान को प्रणाम करना। देखिए प्रभुपाद जी कैसे प्रणाम कर रहे हैं।
He's always meek and mild, with a warm and friendly smile.
भगवान को अपने बाएं तरफ रखते हुए प्रणाम करना चाहिए।
Singing all the while, he sings out Krishna's name.
दास्यम, भगवान का दास बनना। तो इस प्रकार से इन नौ नौधा भक्तियों के द्वारा भगवान को इजली प्रसन्न किया जा सकता है। अभी भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं इस ज्ञान के बारे में कि अश्रद्धालु लोग कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्या परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। बोलते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वो बार बार इस मृत्यु संसार में घूमते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में, इस तरीके से वो ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। अभी भगवान अचिंत संबंध के बारे में बताते हैं, चार नंबर श्लोक से लेकर दस नंबर श्लोक तक। भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानी नाचाहं ते स्ववस्थिति वस्थितः। बोलते हैं कि ये सारा जगत जो है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, और सारे जीव मुझ में वास करते हैं, मैं उनमें नहीं रहता। तो इसका मतलब है भगवान के ऊपर सारी सृष्टि जो है डिपेंडेंट है। भगवान के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जो है इसका बोझ अपने ऊपर नहीं रखते हैं। कृष्ण जो है स्वयं नहीं करते, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जो है अपना विस्तार करते हैं, जिनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में वो क्या करते हैं, विस्तार करते हैं और उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर वही कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में परिवर्तित होके अपने आप को सारे ब्रह्मांडों में वो प्रवेश करते हैं, सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। और वो सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश करके वहां पे जीव और सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, उसी में से एक ब्रह्मा जी भी होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को कार्य दिया जाता है कि अभी तुम जो है शुरू करो, सृष्टि करना शुरू करो। तो प्राथमिक सृष्टि करते हैं भगवान और विसर्ग यानी कि दूसरी सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं नचमतस्थानी भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्तो ममात्मा भूत भावनः। बोलते हैं, कहते हैं कि नचमतस्थानी भूतानि, सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, मैं जीवों का पालक हूं, हर जगह व्याप्त हूं, फिर भी मैं इसका अंश नहीं हूं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। इसका अर्थ यह है कि भगवान इसके भीतर स्थित नहीं है, सृष्टि के भीतर भगवान की सृष्टि नहीं हुई है, भगवान अलग है और स्वराट है। स्वराट मतलब होता है पूर्ण रूप से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना, पूरा अलग रहते हैं भगवान। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो यहां पे बताया है। अगले श्लोक में भगवान इसको समझाने का प्रयास करते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुपधारया। जिस प्रकार सर्वत्र वायु व्याप्त है लेकिन आकाश के अंदर ही है, आकाश के अंदर ही वायु रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थिर समझना चाहिए। अब देखिए, इस लीला में भगवान अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा ये मूवी?
It's not my fault.
What's not your fault?
If Krishna gets sick, I told him not to eat it.
Eat what?
Dirt.
Is this true? Did you eat dirt?
He's lying. Look in his mouth.
My dear little Krishna, can't you see how worried your brother is? Why have you eaten dirt? Are you sure he ate dirt, Balram?
Yes!
There is only one way to know for sure. Krishna, if you are telling the truth, then just open your mouth and I shall see.
तो अपने आप को भी यशोदा मैया वहां पे देख रही हैं। कृष्ण कितने महान हैं कि उन्होंने ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये अर्जुन को बहुत कम समय में प्रदान कर दिया।
Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me.
कारणोदक्षाई विष्णु, पहले विष्णु।
Just as you see pearls hanged upon a thread.
इनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु होके उस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट पहुंच जाते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर देखिए कैसे दिख रहे हैं, ये सारे जो छोटे छोटे बबल दिख रहे हैं एक ब्रह्मांड है।
Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hanged upon a thread.
भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में बोलते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, अगले अध्याय में, मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। आप सोचिए, ये पृथ्वी जो हम लोग, हमको वैज्ञानिक लोग दिखाते हैं कि पृथ्वी गोल है, ये कैसे वहां पे स्थित है, क्योंकि भगवान इसमें प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए वो इसको धारण किए हुए हैं। भगवान कहते हैं, फिर भी कृष्ण सभी भौतिक दुनिया से परे अपने स्वयं के धाम गोलोक में रहते हैं और अपने भक्तों के साथ लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो यहां पे मुख्य बात समझने की यह है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सब भी गवर्नमेंट ही होती है एक तरीके से। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं ये काम करवाता हूं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करता हूं, मैं काम करवा लेता हूं, जो भी ये चीजें हैं उसके बारे में भगवान यहां पे बता रहे हैं। अभी आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से वो सृष्टि का सृजन और संहार होता रहता है। 7 नंबर श्लोक और 8 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिम यान्ति मामकम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प का अंत जब होता है तो सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और अन्य कल्प के, हरे कृष्णा प्रभु,
प्रभु जी मैं स्टेशन पे हूँ, वो प्रभु जी उतरेंगे कि
नहीं? नहीं, आप उतरेंगे, वो शायद गेट पे आएंगे।
ओके,
देखना, अभी ट्रेन आई नहीं आई?
नहीं, अभी तो आने वाली है।
हाँ, तो देख लो, हो जाएगा, मिल जाएंगे। हाँ, नंबर तो है ना, तुम्हारा नंबर भेजा ना,
मैं उनका नंबर देखना पड़ेगा, मैं लेता हूँ।
हाँ, मैं भेजा हूँ तुमको।
हाँ, ठीक है, ठीक है,
फोन करो, तुरंत फोन करो।
हाँ,
तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति से उनको प्रकट करता हूँ अन्य कल्प में, और प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम एवं कृष्णम अवशम प्रकृतिर वसात। सारा विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट भी हो जाता है। चलिए आपको म्यूट कर देते हैं। ओके, तो भगवान कहते हैं मैं गोलोक वृंदावन में रहता हूं और ये सारे कार्य मुझे बाध्य नहीं करते। वो क्या करते हैं भगवान, भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते रहते हैं। इसलिए एक श्लोक आता है उपनिषद में, न तस्य कार्यम करणम च विद तेन तत् समस्त चभ्यादिकश्च दृश्यते परास शक्तिर विविधिस्य श्रूयते एसाव भक्ति क्रिया बलक क्रियाचा ज्ञान बलक क्रियाचा। उनके लिए कोई भी कार्य नहीं है करने के लिए, वो क्या खेलते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। कई सारे लोग इस भौतिक संसार को चलाने के लिए अपॉइंट किए गए हैं उनके द्वारा, जैसे क्षीरोद साई विष्णु, हाँ, ये सारे लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। तो इस तरीके से भगवान आगे के 10वें नंबर श्लोक से उपासना के बारे में बताना शुरू करते हैं। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आगे शुरू होता है। भगवान 10वें नंबर श्लोक में बोलते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना कौन्तेया जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है वो सारा कार्य करती है। प्रकृति किसके अंडर में है, मेरे अंडर में कार्य करती है प्रकृति, मैं प्रकृति के अंडर में नहीं हूं, प्रकृति मेरे अंडर में है। तो आपको पता होगा कि चार युग होते हैं, चार युगों में लगभग उनकी चारों युगों की जो एज है वो 43,20,000 साल है, और ऐसे करके ब्रह्मा जी, हाँ, ये इस चार युगों को मिलाते हैं तो एक दिव्य युग बोला जाता है। ब्रह्मा जी जो है 1,000 दिव्य युग जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो जब ब्रह्मा जी सोने के लिए जाते हैं, यानी उनका जब दिन हो जाता है, रात शुरू होती है, तो सारे जीव जो है सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, और इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी जगते हैं तो पुनः सृष्टि करते हैं। बार बार ऐसा ही होता रहता है। तो भगवान कहते हैं मैं प्रकृति का स्वामी हूं, प्रकृति मेरे अंडर में काम करती है, पर मैं उस सबसे उदासीन हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण को हम सब लोगों से डायरेक्ट डील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं को उन्होंने एंगेज किया हुआ है। लेकिन भगवान फिर यहां पे आते क्यों हैं, संसार में जन्म क्यों लेते हैं, बार बार प्रकट क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान को जो भक्त हैं वो भगवान को बुलाते हैं तो उनके लिए आते हैं। कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, वो यहाँ पे लीला करते हैं, उन लीलाओं को शास्त्रों में लिखा जाता है और उन लीलाओं का गान करते हुए, उनको पठन करते हुए, उनको सुनते हुए जो भक्त लोग हैं वो भगवान के धाम में वापस चले जाते हैं। तो ये जो प्रलय है ये चलती रहती है, जैसे हमारा शरीर का भी प्रलय होता है, ये जब भी चारों युग खत्म होते हैं तब प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब एक प्रलय होता है, इस तरीके से प्रलय जो है कंटिन्यू होता रहता है। तो जो 10वां नंबर का श्लोक था, माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे किसी घर में कोई गेस्ट आता है तो मान लीजिए पति है वो बात कर रहा है उस गेस्ट से और वो इशारा करता है पत्नी की तरफ, पत्नी देख के समझ जाती है कि क्या करना है, पत्नी तुरंत जो है वो उसके लिए कुछ लेके आती खाने पीने के लिए। ठीक वैसे ही भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, भगवान जैसा बोलते हैं प्रकृति वैसा ही करती है। तो अभी भगवान आगे बताना शुरू करते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग 9.11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। तो जब भगवान कृष्ण यहां पर थे, अवजानन्ति मां मूढ़ा, तो उस समय एक राजा हुआ, उसका नाम था पौंड्रक, वो अपने आप को कृष्ण घोषित कर दिया, उसने दो हाथ लगवा लिए नकली हाथ और वो भी बांसुरी बजाने लगा, चक्र ले लिया, संघ चक्र गदा पद्म चार ले लिया और बोला कृष्ण तुम कृष्ण नहीं हो, मैं असली कृष्ण हूं, ऐसा करके उसने डिक्लेयर कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा एक बार तुम रणभूमि में आओ फिर तुमको बताता हूं कौन है कृष्ण, और रणभूमि में आया उसका गला काट दिया। तो कई लोग जो है उस समय सोचिए जब भगवान कृष्ण यहां पर साक्षात मौजूद थे, साक्षात उपस्थित थे, तब भी कुछ लोग ऐसा हुआ करते थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। और अभी तो भगवान साक्षात, अभी तो भगवान साक्षात उपस्थित है नहीं, तो इस समय अगर भगवान को कोई भगवान नहीं मानता है तो उसकी तो बात छोड़ दो। जब उस समय भगवान थे तब भी लोग भगवान को नहीं माना करते थे। तो भगवान कहते हैं मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मानुषीं तनुमाश्रितम्, मैं भले ही मनुष्य रूप में अवतार ले रहा हूं पर मैं सामान्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। इसलिए भगवान गोवर्धन लीला करते हैं, काली अदमन लीला करते हैं, भगवान मुख में ब्रह्मांड दिखा देते हैं, विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, जिससे कि वो अपनी अलौकिकता को प्रूव करते हैं। तो भगवान कृष्ण के उन लोगों का क्या होता है जो भगवान को इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति मानते हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीमासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। बोलते हैं कि मोघासा मोघ कर्माणो, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, आसुरी नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, उन लोगों की मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ निष्फल हो जाता है, सब कुछ खराब बेकार हो जाता है। फिर अगले श्लोकों में 13 और 14 नंबर श्लोक में भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते हैं, क्या बोलते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माशिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो मोह मुक्त महात्मा जन है वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा नस्तु, महात्मा, महात्मा मतलब कोई रबर स्टैंप नहीं है कि एक स्टैंप मार दिया तुम महात्मा हो। कभी कभी आजकल तो महात्मा किसी को भी बोल रहे हैं, कोई समाज सेवी है उसको भी बोल देते हैं, कभी कोई चापलूसी कर रहा होता है उसको भी चापलूसी करते करते अरे आप तो महात्मा है और कोई कोई जो है कुछ देशभक्त होता है उसको भी महात्मा बोल देते हैं। महात्मा मतलब जो भगवान कृष्ण को परम पिता के रूप में समझा है और साथ साथ में जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वो परम महात्मा है। तो भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति मासिता, वो लोग जो हैं वो कहां रहते हैं, भक्ति में निमग्न रहते हैं, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो दो तरीके की प्रकृति होती है, एक दुर्गा देवी एक राधा रानी, देवी और एक जो भौतिक संसार में है दुर्गा देवी, और एक जो आध्यात्मिक संसार में है राधा रानी। तो जो महात्मा होते हैं वो राधा रानी के शरण लेते हैं। आप गए होंगे वृंदावन कभी तो वहां पे देखे होंगे लोग राधे राधे बोलते हैं, तो वो राधा रानी के शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पत्नी जो है वो अगर पति से कुछ कहती है प्रेम के वशीभूत होके तो कभी भी पति जो है उसको ना नहीं बोल पाता। ऐसे ही राधा रानी जब कहती हैं कि ये भक्त अच्छा है तो भगवान कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग भी हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, तो पहले हम हरे नाम लेते हैं राधा रानी का नाम लेते हैं। तो दैवी प्रकृति की शरण में महात्मा लोग रहते हैं और कृष्ण की सेवा में वो खुद को लगा के रखते हैं। बाकी लोग कहां रहते हैं? तो बाकी लोग दुर्गा जी के शरण में रहते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, वो उसकी शरण में रहते हैं। तो ये लोग करते क्या है, जो महात्मा लोग दैवी प्रकृति के शरण में रहते हैं वो करते क्या है? सिंपल सा आंसर भगवान दे रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ ध्यान व्यान नहीं करते हैं ब्रह्म का परमात्मा का। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। वो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। वो भगवान को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेते हैं। तो अभी दुरात्मा और महात्मा, दुरात्मा मतलब वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे कि शिशुपाल दुर्योधन कंस इत्यादि लोग। इन लोगों ने सामने सामने भगवान को देखा फिर भी क्या मानते हैं, तो सामान्य व्यक्ति है, माखन चोरी करता था, ये उल्टा सीधा कुछ ना कुछ। इवन दुर्योधन ने तो भगवान को अरेस्ट करने का भी प्लान कर लिया था, लेकिन जो महात्मा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं और भगवान कृष्ण उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। यतन तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक, और हमेशा प्रणाम करते हैं भगवान को और नित्य युक्ता उपासते, निरंतर मेरी पूजा में लगे रहते हैं। तो पहले लोगों के बारे में बताया जो कि भगवान के भक्त नहीं है, अभी यहां पर बताया जो भगवान के भक्त हैं। अभी ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अलगे टाइप के हैं, तीसरे टाइप के लोग हैं। ये तीसरे टाइप के लोग जो हैं वो कौन से हैं, पंद्रह नंबर श्लोक में भगवान जो है वो बता रहे हैं। 15 नंबर श्लोक, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। तीन तरीके के लोग होते हैं, एकत्वेना पृथक्त्वेना और विश्वतो मुखम। पहले जो तीन बताए, पहला था जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, दूसरे जो भगवान की भक्ति करते हैं, अभी तीसरे तरीके के लोग जो कुछ और करते हैं वो क्या है, वो भी तीन प्रकार के हैं। एकत्वेना, जो भगवान में और अपने में कोई डिफरेंस नहीं मानते, यानी वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक रूपता मानते हैं कि मैं भी भगवान ही हूं। दूसरे होते हैं पृथक्त्वेन, दूसरे होते हैं पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब वो अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, भगवान आगे बताएंगे इसके बारे में। और तीसरे होते हैं विश्वतो मुखम, यानी वो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। भगवान जो इस संसार में विश्व रूप, ऐसा मानते हैं कि भगवान ही विश्व बन गए, उस रूप की वो पूजा करते हैं। तीन तरीके के लोग होते हैं। भगवान 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ सदाहम हम औषधम मंत्रो अहम अमेवाज्य महम अग्निहुतम। मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं हूं, औषधि भी मैं हूं, मंत्र भी मैं हूं, घी भी मैं हूं, अग्नि भी हूं, आहुति भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। वास्तव में सारी चीजें, यज्ञ की अग्नि हो, आहुति दे रहे हैं, जो घी है, मंत्र है, सब भगवान से निकला हुआ है। इसलिए भगवान 17 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि मैं सर्वत्र हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कहते हैं पिता हमस्य, मैं पितामह हूं, माता भी हूं, धाता भी हूं, धाता मतलब आश्रय, मैं ब्रह्मांड का पिता हूँ, ब्रह्म और माता हूँ, और इसका आश्रय भी मैं हूँ, शेल्टर भी ये मेरे अंदर ही लेता है, और इसका दादाजी भी मैं हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही शुद्ध करता हूँ, मैं ओंकार हूँ, और सारे वेद भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान बताते हैं, अगर तुम मेरे को पूज मेरी पूजा करोगे तो सारे यज्ञों के यज्ञों का फल जो है तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, भगवान कहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं उनके बारे में भगवान 20 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक में बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको क्या फायदा होता है, वो यहाँ पे 20 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। त्रैविद्यामाम सोम पापूत पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्र लोक अस्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, जो और सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होके इंद्र के सुरेंद्र लोक, इंद्र के लोक में जन्म लेते हैं, यानी स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं, और वहां क्या होता है, दिव्यान दिव्य देव भोगान, देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं वो लोग। चलिए उसके बाद क्या होता है, जब तक पुण्य उनके पास रहता है तब तक तो पुण्य को भोगते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो तेतम भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जब वो लोग इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म जो है खत्म हो जाते हैं तो पुनः इस पृथ्वी लोक पर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख मांगते हैं उनको क्या मिलता है, गतागतम, आना जाना। देख रहे हैं आप ये जो फोटो यहां पे दी हुई है, तारा गिर रहा है टूट के, मतलब आत्मा जो है वापस इस पृथ्वी पे आ जाती है। हालांकि स्वर्ग में बहुत सारे सुख हैं, वहां बहुत सारे सुख हैं, जैसे बताया सोमरस मिलता है वहां पे, वहां पे स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, वहां पे भोग पदार्थ बहुत सुंदर हैं, वो सब मिलता है, लेकिन फिर क्या होता है, वापस आना पड़ता है पृथ्वी लोक। तो अभी भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताने जा रहे हैं जो उनकी भक्ति के बारे में है। कहते हैं कि अगले श्लोक से संबंध में लिखा है कि देवताओं के उपासकों के विपरीत भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनको कृष्ण से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है जो पुण्य कर्मों द्वारा कभी प्राप्त नहीं होती। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से जो चिंतन करते हैं ऐसे लोग उनका क्या होता है, भगवान कहते हैं जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं तो भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य रूप से मेरी भक्ति करते हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा करता हूं और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। ये दो चीजें ध्यान से सुनिए, योग क्षेम, योग मतलब जो नहीं है वो देता हूं, और क्षेम यानी कुशलता को बरकरार रखता हूं, जो भी उनके पास है उसको मेंटेन रखता हूं। बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें भगवान कहते हैं, किसको, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनकी, उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने देता हूं मैं, जो कुछ नहीं है उनके पास वो मैं देता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। एक बार एक भक्त हुए साउथ इंडिया में, उनका नाम था अर्जुनाचार्य। अर्जुनाचार्य वो भगवान के भक्त थे, रोज भगवद गीता का पाठ करते थे और भगवान की अन्य तरीके से भक्ति किया करते थे। बहुत गरीब ब्राह्मण थे, रोज जाते थे भिक्षा मांगते थे और घर पे लाके भिक्षा जो आता था उससे जो है माता जी वो भोग बनाती थी, भगवान को भोग लगता था और फिर खाते थे। एक दिन की बात है, वो भगवद गीता पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते वो इसी श्लोक पे पहुंचे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को जो नहीं होता है वो देता हूं। अब ये सोचने लगे, मैं तो इतना शांति से भगवान की भक्ति करता हूं, मुझे तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट रहती है, मुझे कभी खाने का कुछ दिया नहीं भगवान, भगवान कहां कुछ दे रहे हैं। ये श्लोक गलत लिखा है। और ऐसा करके उन्होंने एक पेन लिया और पेन से ये वाली लाइन को दो बार काट दिया, योगम क्षेमम वहां में हम, इस लाइन को उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा ये जो है लाइन गलत लिखी हुई है, भगवान ने ये बोला नहीं होगा, ये किसी ने मिक्स कर दिया, ऐसा करके उन्होंने सोचा। ऐसे कुछ देर के बाद वो भिक्षा मांगने के लिए चले गए। इधर वो भिक्षा मांगने के लिए गए, थोड़ी देर बाद दो छोटे छोटे बच्चे आए, एक काला था एक गोरा था, और दोनों बच्चे बहुत सारा अपने अपने सिर पे गठरी लादे हुए थे। तो घर पे पहुंचे, ये पंडित जी तो चले गए थे भिक्षा मांगने के लिए, जो माता जी थी उन्होंने क्या क्या हुआ बेटा कौन हो तुम लोग, बोले हम पंडित जी के शिष्य हैं और उन्होंने हमको ये सामान लेके भेजा है। तो उन्होंने कहा ठीक है रख दो। और वो बच्चे जो है एक एक करके सामान लाने लगे लाने लगे लाने लगे, बहुत सामान, पूरा घर भर गया उनका, इतना सारा सामान लेके आए। और वो बच्चे भी छोटे छोटे 5 साल के बच्चे इतना सारा सामान लेके आ रहे हैं, करके माता जी भी बढ़िया परेशान। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये जो दो बच्चे आए, ये दोनों बच्चे जब जाने लगे, तब ये माता जी ने देखा कि एक जो बच्चा था जो सांवले कलर का था, उस बच्चे की पीठ पे दो निशान पड़े हुए हैं। हम जब कोई मारता है तो निशान पड़ जाता है ना, वो निशान इस बच्चे की पीठ पे पड़े हुए थे। ये माता जी ने कहा अरे रुको रुको रुको। उन बच्चों ने कहा नहीं नहीं हमें बहुत जल्दी, हम अगर नहीं पहुंचे तो पंडित जी बहुत मारेंगे, हमको जाने दो प्लीज जाने दो। उन माता जी ने कहा पहले बताओ ये मारा किसने तुमको, तो बोले आपके पति ने ही मारा है। ओ बाप रे, उन्होंने कहा आ जाने दो इसको बताती हूं करके। ये बच्चे तो बेचारे भाग गए। और ये अर्जुनाचार्य जब वापस आए, अर्जुनाचार्य ने कहा नहीं मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं, मेरे कोई शिष्य ही नहीं है। ऐसा करके जब पूरी बात उन्होंने बताई, तब उनको दिमाग में आया कि अरे मैंने वो भगवद गीता में वो दो जो लाइन थी उसको काट दिया था दो बार, वही दो लाइन जो है भगवान कृष्ण स्वयं अपने पीठ पे उन्होंने उसको धारण किया। और वो उस बात को प्रूव करने के लिए कि भगवान अपने सारे भक्तों का योग क्षेम का जो वहन करते हैं, योग क्षेम वहम में अहम, मैं खुद करता हूं भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं मैं किसी के द्वारा कराता हूं। अभी जैसे हमने पिछले श्लोकों में चर्चा किया, भगवान कहते हैं कि मेरे को प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं, संसार से, ये संसार में क्या चल रहा है मेरे कुछ पर्सनल लेना देना नहीं है। लेकिन जब भगवान के भक्तों की बात आती है तो भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहम अहम, मैं खुद करता हूं वहन उनका। ये बात अर्जुनाचार्य को हजम नहीं हुई थी और भगवान उसको प्रूव करने के लिए स्वयं आए। तो इस प्रकार वो अर्जुनाचार्य तुरंत माफी मांगने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, और तुरंत उन्होंने रबर से वो उस श्लोक में जो उन्होंने लाइन काटी हुई थी उस लाइन को फिर से उन्होंने सही किया। तो ये वो जान गए कि ये कोई और नहीं थे, कृष्ण और बलराम थे। तो ये है भगवान के भक्त और भगवान का संबंध, भगवान उनका इतना ध्यान रखते हैं। देवी देवताओं को कुछ पड़ी नहीं है हमसे, हम देवी देवताओं को प्रसन्न करके कुछ वरदान मांग लेंगे, देवी देवता सोचते हैं वरदान लो भागो यहां से, लेकिन भगवान ऐसे केयर करते हैं। ये है भगवान। तो कहते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो वैदिक है, वो भी तो सही है, प्रॉब्लम क्या है? भगवान कहते हैं सुनो, ये अपन्य देवता भक्ता यजंते सद्यान्विता तेप मामेव कौनते हैं यजंते अविधि पूर्वकम, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति करते हैं, हे कुंती पुत्र वो भी मेरी ही भक्ति करते हैं लेकिन अविधि पूर्वकम, वो गलत तरीके से करते हैं, वो सही नहीं है। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी भक्ति ही विधि पूर्वक है, अन्य देवताओं की भक्ति अविधि पूर्वक है। क्यों ऐसा है? देवी देवताओं की भक्ति करने में प्रॉब्लम नहीं है, शंकर जी को भी कोई जल चढ़ा है बहुत अच्छा है, लेकिन शंकर जी की स्थिति क्या है, कृष्ण की स्थिति क्या है, इसको जान के करना चाहिए भक्ति। अगर वो शिव जी को भगवान का दास, भगवान का मित्र, भगवान का सखा मान के करते हैं तो ठीक है, भगवान मान के करना वहां पर प्रॉब्लम है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जब यानी कि भगवान ब्रज में थे, वृंदावन में थे, तो शिव जी उनका दर्शन करने के लिए आए। शिव जी की वेशभूषा, शिव जी अघोरी बन के आए थे, उनकी वेशभूषा देखे यशोदा मैया ने कहा अरे इसको तो दर्शन कराऊंगे मेरा बच्चा डर जाएगा, मैं नहीं कराऊंगी दर्शन। तो शिव जी बोलते रह गए, अरे मैया दर्शन करा दो लाला का, वो नहीं कराई। और कृष्ण उधर जो है, जब शिव जी चले गए वहां से और थोड़ी दूर पर जाके बैठ गए, अभी भी आप जाएंगे गोकुल में तो वह जगह मौजूद है आशेश्वर महादेव करके, वहां पे अभी भी शिव जी स्थित हैं। तो शिव जी वहां पे बैठ गए जाकर, और शिव जी ने बोला इधर क्या हुआ। कृष्ण जो थे वो रोने लगे और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि शांति नहीं हो रहा है। सारी गोपियां उनको मना मना के हार गईं, लेकिन कृष्ण जो है रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं। तो एक बूढ़ी गोपी थी, उस बूढ़ी गोपी ने कहा कि इसको नजर लग गई है। हाँ, नजर किसकी लगी है? वो जो लग रहा है जो अघोरी आया था उसकी नजर लगी है, उसको बुलाओ और इसकी नजर को हटाएं। तो यशोदा मैया तुरंत शिव जी के पास गई, वो अघोरी के रूप में जो थे, और उनसे कहा कि आप जरा आइए, हमारे वो जो लड़का है उसको रो रहा है, उस कंटिन्यू उसको आप शांत करा दीजिए। तो शिव जी ने कहा चलो। शिव जी आए और जैसे ही शिव जी को भगवान कृष्ण ने देखा, तुरंत भगवान जो है मुस्कुराने लगे। शिव जी ने कहा माता से, सुनो माता यशोदा, आप कृपया इस बच्चे के चरण चिन्ह चरण कमलों को मेरे सिर पे धारण कराओ। उनके चरण कमलों को मेरे सिर पे धारण कराओगे तो ये हमेशा आनंद में रहेंगे, कभी भी नहीं रोएंगे। तो इस प्रकार जैसे ही भगवान कृष्ण के चरण कमलों को यशोदा मैया ने भगवान शिव के सिर पे रखा, तुरंत शिव जी भी जो है वो मदोन्मत्त हो गए और वो भी आनंद से नृत्य करने लगे। और शिव जी से माता यशोदा कहती हैं कि आप कृपया यहीं रह जाइए, अभी आप जाइए मत, कभी भी हमारा बच्चा जो है रो रहा होगा तो आपको देख के वो प्रसन्न हो जाएगा। शिव जी ने कहा ठीक है, और शिव जी पड़ोस में ही रहने लगे। शिव जी ने कहा लेकिन एक शर्त है मुझे, इस बच्चे का जूठा भोजन यानी कि इसका महाप्रसाद मुझे मिलना चाहिए और इसका चरणामृत मुझे रोज मिलना चाहिए, मैं यहां पर रहने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार वो पड़ोस में ही आशेश्वर महादेव में रुक गए। तो शिव जी जो है वो भगवान के विस्तार हैं, भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इस भाव के साथ अगर कोई शिव जी की भक्ति करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिव जी को सेपरेट भगवान मान लेना, वहां पे समस्या है। तो सामान्यतः लोग क्या करते हैं, अविधि पूर्वकम पूजा करते हैं, वो जाते हैं और देवी देवताओं से वो क्या करते हैं, कुछ मेटेरियल चीजें मांग लेते हैं, कुछ भौतिक चीजें मांग लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर लोग मुझे नहीं जानेंगे कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं परम सत्य हूं, तो वो देवी देवताओं के पास जाएंगे और देवी देवताओं के पास जाके उनको क्या मिलेगा, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उनको भौतिक चीजें ही मिल पाएंगी, मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो कोई कह सकता है लेकिन वो तो वेदों को फॉलो कर रहे हैं, हाँ वेदों को तो मान रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेचन तुमाम अभिजानन्ति त्वनेतश्च एवंति चरे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूते ज्य यान्ति मद्याजिनोपिमाम। हालांकि वो वेदों को पालन कर रहे हैं लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के लोक जाएगा, पितरों की पूजा करता है पितरों के लोक जाएगा, भूतों की पूजा करता है भूतों के लोक जाएगा, और यान्ति मद्याजिनोपिमाम जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा लेकिन जो मेरी पूजा करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, ये भगवान कहते हैं। और अभी अगले श्लोक में भगवान जो है बताते हैं कि कैसे उनकी आराधना विस्तार से की जा सकती है। अभी भगवान ने स्थापित कर दिया कि वो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, अब वो बताते हैं कि कैसे वो भोग भोगना चाहते हैं, कैसा भोग वो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको भोग कैसे लगाएं। वो हम 26 से 34 में पढ़ेंगे। कितनी सरल है भक्ति, देवताओं और उन भगवान की पूजा में बहुत विरोधाभास है। कृष्ण की पूजा करना बहुत सरल है, अभी मान लीजिए कोई देवता की पूजा करे थोड़ी भी गलती होगी ना देवता नाराज हो जाएगा, लेकिन भगवान थोड़ी भी गलती जो है उसको देखते नहीं है। यहां पे जो हम लोग ये फोटो देख रहे हैं इसमें विदुर जी हैं, विदुर जी आ रहे हैं और विदुराणी जो है वो भगवान की सेवा कर रही है। विदुराणी भगवान को केले के छिलके खिला रही है और केलों को फेंक रही है, केले में जो हलवा अंदर हो उसको फेंक रही है और केले के छिलके जो है भगवान को खिला रही है, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान 26 नंबर श्लोक में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः। बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्ता फूल फल या जल प्रदान करता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। दो चीजें, भक्त करना चाहिए और भक्ति के साथ करना चाहिए, प्रेम और भक्ति के साथ करना चाहिए। हाँ, तो आप लोगों ने सुना होगा दुर्योधन के घर पे 56 भोग बना हुआ था, भगवान ने उसको ग्रहण नहीं किया। उन्होंने क्या ग्रहण किया? विदुरानी के द्वारा दिए हुए केले के छिलकों को ग्रहण कर लिया। आप लोगों ने भजन भी सुना होगा, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा मैया के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। वो शबरी वाला खिलाने वाला था। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। और आने वाला द्रौपदी के लिए, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। तो यहां पे देखिए चार पांच माताओं के बारे में बताया गया, सबरी, यशोदा, द्रौपदी, गोपियां। इन लोगों ने भगवान को कितनी आसानी से प्रसन्न कर लिया। यशोदा मैया की तरह जो गोपियां हुआ करती थी, वो भगवान को नचाती थी। भगवान थोड़े से छाछ के लिए नाचते थे उनके साथ, उनके सामने नाचा करते थे। यशोदा मैया उनको सुलाती थी। सबरी भगवान उनके बेर खाने के लिए कहां कहां ढूंढ के उनके पास पहुंचे। और द्रौपदी, जिन्होंने सबको सारी आशाएं छोड़ दिया और भगवान कृष्ण की शरण ली, भगवान तुरंत पहुंचे उनकी रक्षा करने के लिए। विदुरानी, जो कि भगवान को केले के छिलकों को भोग लगा रही है, भगवान उसको बहुत अच्छे से खा रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्याग दिया, उनका जो 56 भोग था उसको त्याग दिया। और विदुर के घर पे वो सूखा जो है साग खा रहे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं। तो भगवान से विदुर जी आए, विदुर जी बोले क्या खिला रही हो? तो उनको ध्यान आया, भगवान कह रहे हैं अरे इसमें तो बहुत रस मिल रहा था मुझे, केले से ज्यादा तो केले के छिलके में रस था, क्योंकि ये प्रेम और भक्ति के साथ मुझे प्रदान किया गया था। तो अगर ये जो भक्ति है तो ही भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की भक्ति नहीं कर सकता है तो क्या वो भगवान को कुछ अर्पित कर सकता है? भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुस्समदर्पणम्। यत करोसि, जो भी कर रहे हो, यदस्नासि, जो भी खा रहे हो, यज्जुहोसि, जो भी अर्पित कर रहे हो, ददासि, जो भी दान दे रहे हो, यत तपस्यसि, जो भी तपस्या कर रहे हो, तत्कुरुस्समदर्पणम्, मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी भोग लगाते हुए करो, कुछ कर रहे हो, कुछ नौकरी कर रहे हो, मुझे कुछ दान दो। तपस्या कर रहे हो, मेरे लिए तपस्या करो। यज्ञ कर रहे हो, मेरे लिए यज्ञ करो। हर चीज मुझे अर्पित करते हुए करो। अच्छा, उससे होगा क्या? शुभ अशुभ फले रैवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। उसे क्या होगा? सुवासु फले एवं कर्म के बंधन से और सुवासु फलों से तुम मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त कर सकोगे। संन्यास योग में अपने को चित्त को स्थिर करके तुम मेरे पास आ जाओगे। ये है सभी कार्य कृष्ण के लिए करना। तो अब प्रश्न आता है कृष्ण भक्ति की महिमा के बारे में, कि भगवान सभी के प्रति संभाव हैं, तो वो भगवान भक्तों से संभाव रखते हैं या कुछ उनका विशेष लगाव है? तो भगवान कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मैत्रितेषु चाप्यहम्। देखो अर्जुन, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। समूहम सर्वभूतेषु, सब मेरे लिए सम है, न द्वेषो न प्रियः, कोई भी मेरे लिए प्रिय नहीं है, कोई भी मेरे लिए द्वेष नहीं है किसी से। मैं पक्षपात भी नहीं करता, लेकिन ये भजंती जो मेरा भजन करते हैं, तुम आम भक्त्या मैं ते सुचाप्य हम, वो नित्य मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूं, वो भी मेरा मित्र है। यानी उसकी भगवान तरफदारी करते हैं, उसके पक्ष में हो जाते हैं भगवान। जैसे मान लीजिए कोई अमीर परिवार है, जा रहा है ट्रेन में, तो अपने बच्चे के लिए वो हॉट पॉट में लेके जाता है गरम खाना। लेकिन कोई भिखारी उससे मांगता है तो पिछले दिन की बासी रोटी भिखारी को दे देता है, दे रहा है भिखारी को, लेकिन बच्चे के लिए उसका विशेष प्रेम होता है। ऐसे कोई राजा है, राजा सबको दान दे रहा है लेकिन अपने बच्चे के लिए उसका विशेष प्रेम है। तो ये बात जो है भगवान यहाँ पर स्वीकार करें कि ये जो मेरे ये लोग जो है ये मेरे बच्चे के समान है, इनका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, इनका मैं पक्ष लेता हूँ। ये भजंती तो माम भक्त्या मैं ते सुचाप्य हम। अभी आप कई सारी लीलाओं में आपने देखा कि भगवान अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो बोलते हैं कि जो लोग सामान्य लोग हैं उनको मैं ज्यादा बुद्धि नहीं देता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनको मैं स्पेशल बुद्धि देता हूं, विशेष बुद्धि देता हूं, उसके द्वारा वो लोग मेरे पास आ जाते हैं। अब देखिए कृष्ण भक्ति की महिमा। बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अगर कोई ऐसा है जो दुराचारी है, गलत कार्य करने में वो इंगेज हो गया है, गलती हो गई उससे, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए, साधु रेव समन्तव्य। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि उसको फिलोसफी पता है और वो कभी भी सही रास्ते पे आ सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो पुनः सही रास्ते पे आ जाएगा। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी। सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेया प्रतिज्ञानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र ये घोषणा कर दो, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। बताइए कोई देवता बोल सकता है ऐसा? रावण शिव जी का भक्त था, जब ही भगवान राम उसको मारने के लिए आए तो रावण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहा है। पार्वती जी ने कहा जाओ, तुम्हारा भक्त टेंशन में है, वो मरने वाला है। शिव जी ने कहा मैं नहीं जाने वाला, आज उसने मेरे स्वामी से पंगा ले लिया। तो ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान की अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये सब जान के भी भक्ति नहीं करें तो बहुत बड़े मूर्ख है हम लोग। क्या करेंगे इस संसार में, इस संसार को भोग के, इस संसार में नौकरी बिजनेस करके क्या कर लेंगे अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप समझिए इस संसार में आप सब कुछ कर रहे हैं, जीरो 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 बहुत सारे आपने ले लिए, लेकिन कृष्ण की भक्ति करके आपने जीरो के पहले वन नहीं लगाया तो सारे जीरो जीरो ही हैं। आप वन लगा देंगे तो हर जीरो जो है 10 गुना हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी बात तो कभी कभी झूठी साबित हो जाती है। मैंने बोला था कि मैं ये अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने अस्त्र उठा लिया महाभारत में, लेकिन मेरे भक्त अगर कुछ बोल देता है तो उसकी बात को मैं झूठी साबित नहीं होने देता हूं। इसलिए हे कौंती पुत्र तुम घोषणा कर दो नमे भक्ता प्रणस्थिति कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, मैं उसका विनाश होने ही नहीं देता हूं। ये है भगवान की भक्ति। भगवान इतना शुद्धिकरण करते हैं अपने भक्त का। आगे भगवान कहते हैं माम ही पार्थ विपाशित्या ये पिस्यु पाप योनि यः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ते पियान्ति परम गतिम। आप अगर किसी ज्ञानी के पास जाएंगे, किसी योगी के पास जाएंगे तो बोलेगा स्त्रियों के लिए ये भक्ति नहीं है, स्त्रियों के लिए ज्ञान नहीं है, स्त्रियों के लिए योग नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति हर योनि में संभव है, इवन पाप योनियों में भी संभव है। यहां पे बता रहे भगवान स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा, खास करके स्त्रियों को देखा जाता है अपने परिवार में बिजी रहते हैं, वैश्यों को देखा जाता है पैसे में बिजी रहते हैं, शूद्र लोग होते हैं वो किसी में भी बिजी रहते हैं, उनको सबको भगवान कहते हैं तेपी आंति पराम गतिम, वे सब मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अभी उन ब्राह्मणों का क्या कहना, उन वैष्णवों का क्या कहना जो हमेशा भगवान के संग में रहते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। अगले श्लोक में बताएं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजा सुमाम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त राजर्षि इन लोगों ने कहना ही क्या, तो अतः इस क्षणिक संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, मेरी प्रेमा भक्ति में लगा लो बस। अब भगवान इस अध्याय का अंत करते हुए बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्त एवं आत्मनम मत परायण। दिस इज द एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ भगवदगीता। सारांशों के सारांशों के सारांशों का सार है ये। स्पष्ट रूप में भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आ सकते हो। क्या बोलते हैं मन मना अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। मत भक्तो मेरे भक्त बन जाओ। मम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। मामे वैसस युक्त एवं इस प्रकार पूर्णतया मुझमें तल्लीन होकर आत्मनम मत परायणा तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह है परम गुह्य ज्ञान। तो इस तरीके से भगवान इस ज्ञान को प्रकट करते हैं, अपनी भक्ति की महिमा को प्रकट करते हैं, भक्तों के स्वभाव को प्रकट करते हैं, भक्ति कितनी महान है उसको बताते हैं, और अंत में इस सार को बताते हैं कि मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे में मन लगाओ, इस तरीके से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ये है परम गुह्य ज्ञान। इसको ज्ञात करके हर व्यक्ति अगर इसको अपने जीवन में अप्लाई करेगा तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो अभी आज का सेशन यहां पर समाप्त हो रहा है। अभी अगला अध्याय जो है वो भगवान का ऐश्वर्य है, हम लोग पढ़ेंगे इस सत्र की पुनरावृत्ति। पहले भगवान ने ज्ञान दिया 1 से 3 नंबर के श्लोक में, 4 से 10 में भगवान ने अचिंत संबंध बताया अपना, फिर अन्य उपासनाओं के बारे में बताया। देवी देवताओं की उपासना करते हैं कुछ लोग भगवान की उपासना करते हैं, कुछ और तरीके के लोग होते हैं, और 26 से 34 तक लगभग 9 श्लोकों में भगवान ने भक्ति की महिमा स्थापित किया। हरे कृष्णा। किसी का कोई